جزاك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो सूरह यूसुफ की तफसीर इस क्लास के अंदर चल रही है। मारफुल कुरान जिल्द नंबर 5 से हम उसको पढ़ते हैं, और जो भी आयत तिलावत की गई आयत नंबर 76। तो अभी यही चल रहा था, इसके अहकाम मसाइल जो मुफ्ती शकील रहमतुल्लाह ने लिखे हैं, तो वो हम आखिरी क्लास में पढ़ रहे थे। तो इन आयात से पहला जो मसला या हुक्म निकाला था कि ये जो फरमाए वाले मंजा अभी ही हमलु बगीरन, तो उससे साबित हुआ कि किसी मुअय्यन काम के करने पर कोई उजरत या इनाम मुकर्रर करके ऐलान आम कर देना कि जो शख्स ये काम करेगा उसके उस कदर इनाम या उजरत मिलेगी, जैसे इश्तिहारी मुजरमों के गिरफ्तार करने पर या गुमशुदा चीज़ों की वापसी पर इस तरह के इनामी ऐलान का आमतौर पर रिवाज है। तो यानी ये जायज़ है, इसका जवाज साबित होता है। तो जो फुकहाए कराम हैं जिन्होंने ये फिकह मुरतब करी है, इस्लामी अहकाम व मसाइल का जो मजमुआ है उसको फिकह इस्लामी कहा जाता है। तो उस फिकह को अगरचे के नाम दे दिया जाता है हनफी फिक या शाफी फिक या मालिकी या हम्बली फिक, तो उसको फिर ना कुछ बदनीयत या बदइल्म लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं कि ये तुम इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रहे हो, इमाम शाफी को फॉलो कर रहे हो, तुम नबी अलैहिस्सलाम को और कुरान को क्यों नहीं फॉलो करते। तो ये सिर्फ उनकी जो है ना या तो निमट जहालत होती है, जाहिर है जहालत नहीं होती क्योंकि ऐसी बातें करने वाले लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, तो इस वजह से जहालत की वजह से नहीं बल्कि किसी मजमून मकसद की वजह से वो ये काम कर रहे होते हैं कि लोगों को ना जिनके पास इल्म नहीं है उनको ऐसे गैरत दिलाते हैं कि तुम कुरान और हदीस को क्यों नहीं फॉलो करते, तुम इमाम अबू हनीफा को क्यों फॉलो करते हो। अब तो खैर ये बातें पुरानी हो गई, अब हम दूसरे दौर में दाखिल हो चुके हैं, ये पिछले दौर की बातें हैं, ठीक है, आज से 15-20 साल पुरानी बातें हैं जब ये इस किस्म के तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता था। अब गुमराह की नई शक्लें आ गई हैं इस दौर जमाने के अंदर। तो बहरहाल इसका यही जवाब हमारे उलमाए कराम दिया करते थे कि भाई ये जो फुकहा है ना, इन्होंने कुरान और हदीस से ही मसाइल इस्तेमबात किए हैं, मसाइल डिराइव किए हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये जो अहकाम और मसाइल हैं यहाँ पर, ये उसी की एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि इस आयत से जो है ये मसला अखज़ किया फुकहा ने, और दूसरी आयत से जो है ये मसला अखज़ किया अना भी ज़ईम, कि कोई शख्स किसी दूसरे की तरफ से हक माली का जामिन बन सकता है, ठीक है ना। ये इजाज़त है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप जमानत किसी दूसरे के बिहाफ पर जो है ना वो दे सकते हैं, और यह जाहिर है ये जमानत वाला मामला जो है ये कानूनी चारजोई के अंदर एक बहुत अहम हैसियत रखता है। एक शख्स जो है वो जब चला जाता है किसी वजह से, किसी शक में इल्जाम में वो प्रिजन में चला जाता है, तो अब उसके ऊपर जो है ना वो मुकदमा चलेगा, आप कौन, अब वो क्या करेगा उसका, तो जमानत का एक रास्ता रखा गया कि जिससे कि जो है ना वो बाहर आकर के अपना काम काज कर सकता है, लेकिन मुकदमा भी उसके ऊपर चलता रहेगा, और जब तक वो साबित ना हो जाए उस वक्त तक उसको मुजरिम मुजरिम नहीं कहा जाएगा। तो जमानत का जो एक सिलसिला है इससे जो है वो फिर दुनिया का कारोबार आसानी के साथ चलता रहता है। फिर उसके बाद जो तीसरी बात आज पढ़नी थी कि कजाने का कितना अली यूसुफ से मालूम हुआ कि किसी शरी मसलहत की बिना पर मामले की सूरत में कोई ऐसी तब्दीली इख्तियार करना जिससे अहकाम बदल जाएं, जिसको फुकहा की इस्तेलाह में खीला शरिया कहा जाता है, ये शरअन जायज है। खीला शरिया ये शरअन जायज है, लेकिन शर्त के साथ। शर्त ये है कि इससे शरी अहकाम का इब्ताल लाजम ना आता हो, ठीक है, वरना ऐसे ही ले शरी अहकाम का इब्ताल का मतलब कि जिससे कि शरी अहकाम जो है ना वो मुअत्तल हो जाए, बातिल हो जाए, और वो ऐसा लगे कि जैसे आप बस उनके साथ खेल खेल तमाशा करना शुरू हो गए, ठीक है, आम जुबान में इसको खेल खेल के तमाशा करना कहते हैं शरीयत के अहकाम के साथ, ठीक है। और जरा जरा इस्तलाही लफ्ज में टर्म में इसको इब्ताल कह देते हैं, ठीक है। तो जायज बेशक है, लेकिन इसको इसका यूज जायज है। अंग्रेजी हमारी तो अंग्रेजी इंग्लू जुबान है ना, इंग्लिश प्लस उर्दू, तो उसके अंदर बात ज्यादा आसानी से भी कभी समझ में आ जाती है हमें कि जी यूज जायज है, अब्यूज जायज नहीं, अब्यूज जायज नहीं है, ठीक है। तो फरमाए कि वरना ऐसे ही ले, बाय इत्तेफाक हराम, बाय इत्तेफाक फुकहा हराम है, यानी अगर अब्यूज करेंगे तो हराम है ये काम। जैसे जकात से बचने के लिए कोई हीला करना, ठीक है, अपना माल जो है वो किसी दूसरे के नाम कर दिया या किसी दूसरे को कर दे दिया, और वो शख्स ऐसा है कि जो कि अब आपके माल को डर के मारे वो भी नहीं कर सकता, अपनी मिल्कियत में रख भी नहीं सकता, जब आप उसे मांगेंगे तो ऐसे स्ट्रिंग्स अटैच्ड होंगे इसके साथ कि उसको आपको मजबूरन वापस करना ही होगा, ठीक है। तो साल पूरा होने से पहले जो है वो ऐसे किसी शख्स को माल दे दिया था, अभी ये तुम्हारा माल है, और उसके बाद जो है वो माल वापस ले लिया, क्योंकि अब साल पूरा ही नहीं हुआ, ये बात पहले हो चुकी है। तो ज़कात से बचने के लिए हीला इख्तियार करना, या रमजान से पहले कोई गैर जरूरी सफर सिर्फ इसलिए इख्तियार करना कि रोजा ना रखने की गुंजाइश निकल आए, ठीक है। जो रूटीन का सफर है जो कि इस नीयत से नहीं किया जा रहा कि रोजा जो है ना वो छोड़ने की गुंजाइश निकल आएगी, कि जो है वो निकल आएगी, हीला निकल आएगा, ठीक है। इवन चाहे वो कोई आपका बिजनेस का सफर हो, रिश्तेदार से मिलके मिलने जाने का सफर हो, लेकिन इस नीयत से नहीं कर रहे हैं कि रमजान के रोजे जो है ना वो माफ करवाने हैं असल में, ठीक है ना। बस जाना इस तरह से हो गया कि भाई यानी छुट्टियां आ रही हैं रमजान के अंदर, अब छुट्टी में ही जा सकते हैं मिलने के लिए, उसके अलावा जा नहीं सकते, तो रमजान में जो सफर करेंगे तो उसके अंदर जो है वो रोजा छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुसाफिर के ऊपर रोजा छोड़ना जायज है। उम्रे का सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उम्रे के सफर के अंदर भी रोजा छोड़ना जायज है, ठीक है। उसी लेकिन खास एक नियत का मामला है ना भाई, किसने हिसाब किताब करना है, किसने जजा और सवाब और सजा देनी है, इंसानों ने तो नहीं देनी ना, रिश्तेदारों ने तो नहीं देनी ना, मोहल्ले वालों ने तो नहीं देनी ना, तो ये तो सारा का सारा मामला अल्लाह के हाथ में है कि उसने देनी है सजा, है ना, उसने हिसाब किताब करना है, और उसी को दिल का हाल मालूम है कि किस नियत से इसने सफर इख्तियार किया है। बड़ी कॉमन सेंस की, बड़ी सिंपल बात है, लेकिन शैतान जब किसी के ऊपर गालिब आ जाता है या नफ्स गालिब आ जाता है ना, तो इतनी सिंपलेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल जो है ना वो निगाहों से ओझल कर देता है कि तुम किसकी खातिर रोजा रख लो, किसको तुम्हारी नीयत का पता है ना। तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने में और जो है ना उल्टी सीधी किस्म की हरकतें करना शुरू कर देते हैं, हालांकि लोगों ने सवाब अजाब नहीं देना था, लोगों ने हिसाब किताब नहीं करना था कि रोजा क्यों छोड़ रहा है और रोजा क्यों नहीं छोड़ रहा, राइट, अल्लाह ने करना था। तो भाई तुम अगर अल्लाह को इस काबिल भी नहीं समझते कि वो तुम्हारे दिल का हाल जानता हो, तो फिर तुम कर क्या रहे हो, कौन से दीन के ऊपर तुमने अपना नाम रखा हुआ है, तुम कौन से मुसलमान हो, तुम कौन से ईमान वाले हो, कितनी मुश्किल, कौन सी मुश्किल बात है इसके अंदर। लेकिन यही अशरफुल मखलूकात जो हैं, बड़े बड़े जहानत के काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, बड़ी जबरदस्त बिजनेस जो है ना वो हैंडल कर रहे होंगे, वहां सारी अकल चल रही होती है, और अल्लाह के मामले में सारी अकल जो है ना वो बिल्कुल मर जाती है, ठीक है, ऐसे शख्स की, ठीक है। क्यों होता है? अल्लाह की नाफरमानी, ये चूंकि बाकी मामला में भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होता है ना, तो इस वजह से इन मामला के अंदर अल्लाह ताला इसकी अनफॉर्चुनेटली ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ जाता है, अल्लाह ताला इसकी मत मार देता है, ठीक है। और ये कॉमन सेंस वाली बात उसको समझ में नहीं आती होती उस वक्त। बहरहाल, तो भाई ये कोई गैर जरूरी सफर सिर्फ इसलिए अख्तियार करना कि रोजा ना रखने की गुंजाइश निकल आए, ये बा इत्तेफाक हराम है। ऐसे ही हीले करने पर बाज अकवाम पर अजाब इलाही आया है, जैसे कि वो किरदतन खासिरीन है ना, वो जो बनी इसराइल के लोगों को बंदर जो बना दिया गया था, तो वो इसी किस्म का हीला करते थे कि उनको मना किया था कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना है, और वो जो है वो मछलियों को जो है ना वो ट्रैप करके इधर ले आते थे और फिर दरवाजा बंद कर देते थे और मछलियों को पानी में रहने देते थे, मछलियों को पानी में रहने देते थे, ठीक है। गोया कि वो अल्लाह ताला के साथ खेल कर रहे थे कि हमने कोई थोड़ी मछलियों को शिकार किया हफ्ते के दिन, हमने तो खाली उनको जो है वो एक पानी से दूसरे पानी में पहुंचा दिया है। फिर जब हफ्ते का दिन गुजर जाता था तो फिर उन मछलियों को जो है वो अपने जाल में पकड़ करके बाहर निकाल लेते थे, ठीक है। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला की ऐसी उनके ऊपर पकड़ आई कि उनको जो है ना वो बंदर बना दिया गया, यानी दुनिया के अंदर उनके ऊपर अजाब अल्लाह ताला ने इज्तमाई शक्ल में नाजिल कर दिया। तो ये इसी हीले की वजह से हुआ था, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हीलों से मना फरमाया है, और बा इत्तेफाक उम्मत हराम है। इत्तेफाक उम्मत, उम्मत का किसी यानी उम्मत के उलमाए कराम का किसी बात के ऊपर इत्तेफाक हो जाए ना, तो उससे भी चीज हराम हो जाती है, ठीक है ना। यानी कुरान की कोई आयत नहीं इसके ऊपर, ठीक है, यानी इस हीले के हराम होने के ऊपर कुरान मजीद की कोई आयत नहीं, इस हीले के हराम होने के ऊपर हदीस मुबारक के अंदर कोई सराहत नहीं मिल रही, लेकिन उम्मत के उलमाए कराम का इजमा हो गया इसके ऊपर। तो इजमा जो होता है, कंसेंसस ऑफ द उलमा ऑफ उम्मत, ये भी एक शरई हुज्जत है, जैसे कुरान और हदीस शरई हुज्जत है, ठीक है। तो बइत्तेफाक उम्मत हराम है, इन पर अमल करने से कोई काम जायज नहीं हो जाता, बल्कि दोहरा गुना लाजिम आता है, एक तो असल नाजायज काम का, दूसरे ये नाजायज हीला जो एक हैसियत से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चालबाजी का मुरादिफ है। इसी तरह के हीलों के नाजायज होने को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल हील में साबित किया है, और भी फुकहा ने या मशायख ने जो है वो किताबुल हील के नाम से किताब लिखी है, जिसके अंदर इस हीले के तफसीलात को बयान किया गया है। ठीक है जी, कोई सवाल वगैरह? हीले का एक इस्तेमाल आम तौर पे जो है ना, जो मदारिस के अंदर राइज है, जो कि जिसके ऊपर जवाज ही है, और बहरहाल कुछ लोगों को उसके ऊपर एतराज है, लेकिन उमूमी तौर पर जवाज ही का है कि जो मदरसों में जकात दी जाती है, ठीक है, तो मदरसों की जकात जो है ना वो भी फिर इसी तरीके से फिर मदरसे के अखराजात के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि जो जकात के मुस्तहिक होते हैं उनसे कहा जाता है कि भाई अब मदरसा चलना है, नहीं चलेगा मदरसा तो आप कैसे पढ़ेंगे, आपके खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा, आपके जो है वो जो साथ रहने वाले लोग हैं उनका कैसे इंतजाम होगा, दरसो तदरीस का सिलसिला बंद हो जाएगा, हमारे पास वसाइल नहीं है, तो अब हमें जकात ही का पैसा लोग दे रहे हैं। अब ये तो अवाम की बदबख्ती है ना, ये आज सुबह भी औरतों की क्लास के अंदर बात हुई है कि उलमाए कराम और जो मदारिस है ना, ये हमारी जरूरत है, ये अवामुन नास की जरूरत है, क्योंकि क्या चीज जायज है क्या चीज नाजायज है इसकी तफसीलात उलमाए कराम को इन मदारिस के जरिए से ही पता चलती है, और हम अगर उनसे ये चीजें नहीं सीखेंगे तो हम जन्नत तक नहीं पहुंच सकेंगे, बल्कि हम जहन्नुम में ही गिर जाएंगे, हम जन्नत तक पहुंच नहीं सकेंगे। हम पुले सरा अगर ईमान के साथ दुनिया से चले गए तो पुरे सरात के ऊपर कट करके जहन्नुम में गिर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो मेहनतें करी अल्लाह को राजी करने के लिए और जो है वो जन्नत में पहुंचने के लिए, वो सआलहा सआयहा के मुताबिक नहीं। ये सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया ना, वो सआलहा सआयहा, और जिसने मेहनत करी आखिरत वाली मेहनत, आखिरत वाली मेहनत की क्या तफसीर है कि आखिरत वाली मेहनत वो मेहनत है जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, नियत भी उसकी सही हो और तरीका भी उसका सही हो, तो वो आखिरत वाली मेहनत है। अगर आखिरत वाली मेहनत नहीं करी बल्कि अपने मर्जी से जो है वो मेहनतें कर ली अल्लाह को राजी करने के लिए और जन्नत में पहुंचने के लिए, रद्द कर दिया जाएगा उन मेहनत, जैसे आजकल मेहनतें हो रही है ना पूरी दुनिया के अंदर, नेकी की और मुसलमानों की मदद की और फलाने के ढिमकाने की मेहनतें जो हो रही है ना, ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है, इनमें से अक्सर सुन्नत के मुताबिक नहीं है, फितने दज्जाल का जमाना, इसमें तो अक्सर मेहनतें सुन्नत के मुताबिक नहीं है, इन मेहनतों की कोई कबूलियत नहीं है, है ना। जो आज बड़ा लोगों को बड़े बड़े शेर याद आ रहे हैं, मिल गए काबे को पासबा, मिल गए काबे को सनम खाने से, राइट, कोई नहीं, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, जहालत की वजह से जो है उस किस्म के शेर जो है वो इधर चिस्पा किए जा रहे हैं, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से, ठीक है, ऐसे पासवान जो है ना वो अल्लाह ही बचाए ऐसे पासवान उससे, ठीक है। तो जो सुन्नत के मुताबिक मेहनत होगी वो काबिल कबूल है, तो भाई कौन बताएगा कि तुम्हारी मेहनत सुन्नत के मुताबिक है कि सुन्नत के खिलाफ है, उलमाए कराम बताएंगे। तो हम मोहताज हैं उलमाए कराम के, हमें उलमाए कराम को जो है वो सपोर्ट करना है, हमें उनको ना सिर्फ ये कि माल पैसा दे करके सपोर्ट करना है कि मदरसा जो है वो किसी का मोहताज ना हो, बल्कि वो इत्मीनान से वो लोग दीन की हिफाजत का काम करते रहे, बल्कि जो जो शर वाली कुवतें हैं जो कि मदारिस को बंद करने की हर वक्त कोशिशें करती रहती हैं, उन शर वाली कुवतों का रास्ता रोकना भी ये हमारा काम है, ये अवामुन नास का काम है। हमने अपना काम छोड़ दिया है, अब मदरसे वाले खुद ही जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी जो है वो सियासत की कोशिश कर रहे हैं, कभी जो है वो और दूसरे तरीकों से जो है वो लोगों को आराम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मदरसे बंद ना करो, मदरसे बंद ना करो, इसी काम के अंदर लगे रहते हैं। क्यों? व्हाई डू दे हैव टू डू ऑल द वर्क? हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे अपना काम? कि ये मदरसे हमारी जन्नत और जहन्नुम का मामला है, तो इनको बचाना है इन इन शुरूर से, इन फसाद से, इन जो है वो यानी बुरे अनासर से। यानी हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी आने वाली नस्लों की सर्वाइवल के लिए इसकी जरूरत है, लेकिन हम नहीं करते ये सारे काम। और फिर जब मदरसे वाले जो है वो जकात मांगते हैं और जकात को जो है वो मदरसे के इस्तेमाल करने के लिए हीला इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं ये तो गलत काम कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह के बंदे, तुम उनको जकात देते क्यों हो? यानी जो अपने माल की नजासत होती है ना, जकात क्या है? माल को पाक करने के लिए 2.5% निकाल देते हैं, तो फिर बाकी माल जो है वो पाक हो जाता है, तो वो 2.5% नजासत है ना, उसको निकाल दिया, बाकी माल पाक हो गया, तो वो जो नजिस माल होता है वो तुम जाकर के मदरसों में दे रहे होते हो, राइट? दीन के मुहाफिज, जो 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 मुहाफिज हैं, उनको तुम अपना नजिस माल दे रहे होते हो, क्यों? जो पाक माल है उससे क्यों नहीं उनकी मदद कर रहे होते हो? ठीक है, तो अब जो है ना वो जब जाहिर है, अब उनको भी शरीय मसलों का पता है कि भाई मदरसा का जो बिल्डिंग है उसके लिए हम जकात को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनको हीला इस्तेमाल करना पड़ता है उसके लिए। और जब वो हीला इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि ये जायज नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने गरेबान में झांक के देखें ना, तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। जब तक दूसरों के गरेबानों में झांक के देखते रहेंगे, खुसूसन उलमा के गरेबानों में झांक के देखते रहेंगे, उस वक्त तक मसले नहीं होंगे। अपने गिरेबान में झांक के देखें, अपनी हरकतों को देखें कि हम क्या कर रहे हैं दीन के साथ, राइट? हम क्या कर रहे हैं दीन के साथ। बहरहाल आगे की आयात पढ़ते हैं। अब्दुल्लाह बिन शैतान जी बिस्मिल्लाहिर रहीम, قالوا ان يسرق فقد سرق سرق اخو له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون। के भाइयों ने कहा कि अगर इसने चोरी करी, इन यसरक, अगर इसने चोरी करी ना, फकत सरक अखुन लहू, इसके भाई ने भी चोरी करी थी, तहकीक के इसके भाई ने भी, यानी इसका जो सगा भाई था ना यूसुफ, उसने भी चोरी करी थी, मिन कबल, पहले। फ असर रहा यूसुफ भी नफसी ही, यूसुफ अलैहि सलाम ने खामोशी के साथ असर रहा, जैसे वो सिर्री तिरात होती है जो कि अगले बंदे को सुनाई नहीं दे रही होती, और जहरी कराहत होती है दूसरे को सुनाई दे रही होती है, तो सिर्री तरीके से उन्होंने अपने नफ्स के अंदर कहा, वलम युब दिहा लहुम, और उनको जो है ना वो बताया, पता नहीं चलने दिया, यानी इसको जाहिर नहीं किया, बदा बदा यानी जाहिर नहीं किया उसको उनके सामने। तो उन्होंने कहा इस तरीके से, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, काला अंतुम शर्रुम मकाना, कि तुम सबसे ज्यादा जो है ना बुरे दर्जे में हो, तुम लोग शर वाले मकान के अंदर हो, यानी तुम्हारी जो जो पोजीशन है ना वो शर वाली पोजीशन है। ये यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने दिल में कहा, अपनी जी में कहा, वल्लाहु आलमु, और अल्लाह ताला ज्यादा जानता है, बिमा तसिफून, जो तुम बयान कर रहे हो यहाँ पर, क्या क्या झूठ बोल रहे हो तुम, जिस मेरे बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, इसकी तफसीर जो है वो आगे आ रही है कि ये क्या सारा का सारा सिलसिला था, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कालू, उन लोगों ने कहा, या अय्युहल अजीजू, ए ताकत वाले, ए अजीज, ए जबरदस्त, जिसकी कि यहाँ पे यानी सिक्का चलता है, जिसका 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 हुक्म चलता है, या अय्युहल अजीज, इन्न लहू अबन शेखन कबीरन, बेशक इसका यानी बुनियामीन का यानी हमारा जो ये बाप शरीक भाई है, इसका एक बाप है, शेखन कबीरन, बूढ़ा है और बड़ी उम्र का है। शेख जो है वो लफ्ज बूढ़े आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे आजकल जो शेख साहब कहा जाता है ना, तो ये शेख साहब जो है वो असल में इसका जो लफ्जी तर्जुमा है वो बूढ़ा शख्स है, जैसे पीर, लफ्ज पीर भी जो है वो बूढ़े शख्स को फारसी के अंदर कहा जाता है, शेख जो है वो अरबी में कहा जाता है। तो इसका जो है ना एक बूढ़ा और जो है बड़ी उम्र का बाप है, फखुद अहदना मकाना, बस हमें जो है ना हम में से किसी एक को उसकी जगह पे तुम पकड़ लो, रख लो अपने पास, हम में से किसी एक को, अहदा अहदना। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम आपको एहसान करने वालों में से देखते हैं, यानी नेक लोगों में से। नेक लोग जो होते हैं वो एहसान करने वाले लोग होते हैं, मुहसिन होते हैं, हसीन काम करने वाले लोग होते हैं, मुहसिन। ठीक है, तो हम आपको ना अच्छे लोगों में से देखते हैं, आप हम पर तरस खा लीजिए, जैसे बाप के ऊपर तरस खा लीजिए। काला माआज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो प्लानिंग करके सारा का सारा काम किया था, तो आगे जैसे जवाब जवाब दिया, माआज़ल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह। माआज़ल्लाह का लफ्ज जो है वो पीछे भी जब वो जुलैखा ने कहा माआज़ल्लाह, ठीक है, उस वक्त यही अल्फाज तो कुरान मजीद के अंदर ये एक असलूब नजर आता है कि जिस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ना कोई टर्म इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो अक्रॉस द सूरा उस तरीके के अल्फाज जो है वो रिपीटेडली रिपीटेडली आ रहे होते हैं। बहरहाल, तो यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन में भी माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन्नाखुदा इल्ला मन वजदना मताअना, कि हम जो है वो पकड़ लें सिवाय यानी उसके अलावा किसी को, कि जिसके पास हमने अपनी मताअ पाई है, जो प्याला हमारी मता थी, हमारे जो प्रॉपर्टी थी वो हमने किसी जिसके पास पाई, हम उसके अलावा किसी को पकड़ने, अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह की पनाह, हम नहीं ऐसा क्या काम कर सकते। इन्ना इज़ल ज़ालिम, बेशक तब तो हम जो है ना वो बेइंसाफ हो जाएंगे, जुल्म करने वाले हो जाएंगे, अगर हम चोर की बजाय जो है वो चोर के भाई को पकड़ लें। ठीक है, फलम मस्तई असु मिनहु खलसु नजिया, पस जब फलम मा पस जब इस तई असु मिनहु, वो मायूस हो गए उससे, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन्होंने अपना अपना एक प्रपोजल पेश कर दिया निकलने का इस मसले से, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने टिका सा जवाब दे दिया इनको, है ना, नहीं, मैं तो अल्लाह ताला की पनाह, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो जब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम से मायूस हो गए, खलासु नजिया, फिर जो है ना वो फोकस हो करके जो है ना वो नजियन वो मशवरा करने लगे, ठीक है, आपस में मशवरा करने के लिए सर जोड़ के बैठ गए, जैसे हम उर्दू में कहते हैं। काला कबीर हम, उनमें से जो सबसे बड़ा था उसने कहा, अलम तालमु अन्ना अबाकुम, तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि बेशक तुम्हारे बाप ने, यानी तुम्हारे बाप ने, जैसे बाप तो उनका भी था, बाप तो इनके भी थे, हजरत याकूब अलैहि सलाम, ठीक है, लेकिन इस तरह से बैत बोल देते हैं कि भी तुम्हारे बाप, यानी कद अखद अलैकुम मौसिकन, उसने मौसिकन उसने जो है ना वो अहद लिया था तुमसे, मिन अल्लाह, अल्लाह के नाम पर अहद किया था, अल्लाह की कसम यानी तुमसे उठाई थी, वो मिन कबलू मा फरतुम फी यूसुफ, और इससे पहले, मिन कबलू का जो उर्दू में बाब मुहावरा तर्जुमा किया था वो यही जैसे ऊपर भी था, कि इससे पहले मा फरतुम फी यूसुफ, कि तुम जो है ना वो कसूर कर चुके हो यूसुफ के मामले में भी, यही हरकत जो है ना तुम यूसुफ के मामले में भी, कि बाप को जाकर के जो है वो इस किस्म की खबर दे चुके हो कि यूसुफ तो गया, भेड़िया ले गया उसको, और अब जो है तुम जाके खबर दोगे कि अजीज ले गया यूसुफ को, तो पहले भी तुम जो है ना वो कसूर कर चुके हो यूसुफ के हक में। ठीक है, देखें अभी भी जो है ना ये बाज नहीं आए कंप्लीटली, लेकिन इस जुमले से एक बात का अंदाजा होता है कि ये इनके ऊपर ना पहली चोट पड़ी है, पहली चोट पड़ी है, कि इन्होंने जो है ना वो कसूर का एतराफ अभी शुरू किया है। ठीक है, ये मामला होता है इंसान के नफ्स का, ये जो हम गुनाह करते हैं ना ये अपने नफ्स की वजह से करते हैं, ठीक है, और शैतान तो नफ्स को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पर, वो तो आइडियाज दे रहा होता है, असल में जो हम करते हैं वो अपने नफ्स की वजह से करते हैं, क्योंकि अगर नफ्स शैतान को इनकार कर दे तो शैतान हरगिज किसी को गुनाह के ऊपर मायल नहीं कर सकता, तो नफ्स ही शैतान को सुनता है, शैतान की सुनता है, शैतान की तरफ मुतवज्जे होता है और सरे तस्लीम खम करता है शैतान के सामने, तब इंसान गुनाह करता है, वरना शैतान की मजाल नहीं कि वो हमसे गुनाह करवा सके। ठीक है, तो असल में तो नफ्स होता है ना, तो ये जो नफ्स होता है ना ये जब अमारा हालत में होता है, फूला कप्पा हुआ हुआ होता है ना, तो ये इतना आसानी से ठीक नहीं होता, इतना आसानी से एकदम से जो है वो ठीक नहीं हो जाता, इसको चोटें लगानी पड़ती हैं, ठीक है ना। अब या तो हम अपनी मर्जी से चोटें लगा दें इसको, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा इसको ठुड्डे मारें, राइट, कोनियां मारें, लातें मारें, घुसे मारें, ताकि ये जो है ना वो, यानी जिस तरह से एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिराने की कोशिश करता है, तो एक दफा में तो नहीं गिरा सकता ना बड़े पहलवान को, कहीं ना कहीं से उसको मारता है मारता है मारता है जैसे थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थकता है, थकाता है उसको, तो थकता है, कमजोर पड़ता है, फिर कहीं जा करके जो है ना वो निढाल होकर गिरता है। नफ्स का भी यही मामला है, एकदम से नफ्स जो है ना वो गिर नहीं पड़ता, उसको कचौके लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो या अब इसके हमारे ऊपर ये हमारे पास ये चॉइस है कि या तो हम लगा दें अपने नफ्स को, ठीक है ना, इस किस्म की चोटें कि जिससे नफ्स जो है वो श्रिंक होना शुरू करे, जो फूल के कप्पा हुआ हुआ है ना वो श्रिंक होना शुरू करे, या तो हम खुद ये काम कर लें, और अगर खुद नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर करवाएंगे, ठीक है ना, या तो इस दुनिया में करवाएंगे अगर हमारी खैर अल्लाह ताला को पसंद आ गई, यानी हमें हमारी खैर जो है वो अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया, तो इस दुनिया में हमारे नफ्स को जो है ना फिर कचौके लगवाएंगे, और अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए जहन्नम के अजाब का फैसला किया हुआ है तो फिर मरते दम तक जो है ना वो नफ्स जो है वो फूला ही रहेगा, अल्लाह ताला नहीं कचौले लगाएंगे कचौके लगाएंगे, बल्कि मरने के बाद कब्र में लगाने शुरू करेंगे, ठीक है ना, और फिर हशर में लगाएंगे और फिर जहन्नम में लगाएंगे। अब हमारी चॉइस है हम क्या चाहते हैं, खुद कर लें, आसान काम है, बहुत आसान काम, खुद कर लें, राइट, मशाइख की मान लें, उलमा की मान लें, राइट, और जो है ना अपने नफ्स को जो है वो उनकी मान करके ताबे करने की कोशिश करें, शरीयत की ताबे करने की कोशिश करें, आसान रास्ता है ये सुन्नत रास्ता है, और सुन्नत रास्ता जो है ना वो आसान रास्ता होता है, सहाबे कराम ने सुन्नत रास्ते को इख्तियार किया, ठीक है, आसानी से उनका नफ्स जो है वो काबू हो गया, दुनिया के जो उन्होंने आजमाइशें सही वो तो उनके दर्जात बुलंद करने के लिए थी, ठीक है ना, उन्होंने बात मान करके अपने नफ्स को जो है ना वो कमजोर कर दिया, सहाबा का रास्ता हम इख्तियार कर लें, हम जो है वो बात मान लें, नहीं मानेंगे तो या तो मरने के बाद, और वो बड़ा खतरनाक रास्ता है कब्र का अजाब, राइट, और या फिर दुनिया के अंदर कोई ऐसी रुसवाई का अल्लाह ताला मामला कर देंगे कि जो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, जैसे इबरतनाक वाकयात जो है वो आए दिन सुनने को मिलते हैं दीनदारों के घरों के इबरतनाक वाकयात आए दिन सुनने को मिलते हैं, नई बात मान रहे थे, अपनी मनमर्जी का दीन चला रहे थे, राइट, इंटरनेट वाला दीन चला रहे थे, कभी इसको सुना कभी उसको सुना, इसको सुना जो कि शरीयत की इत्तेबा नहीं कर रहे, बस चिकनी चपड़ी बातें कर रहे हैं आगे, राइट, कोई जो है वो गजा की बातें कर रहा है, कोई जो है वो वैसे चिकनी चपड़ी इखलाकियात की बातें कर रहा है, कोई फलाने की बातें कर रहा है, लेकिन शरीयत के अहकामात के मानने की जो है ना ये मामला नहीं है, और ना जो है वो सुन्नत के तरीके के मुताबिक काम हो रहा है, तो ऐसे लोगों को सुन रहे होते हैं और बड़ा समझ रहे होते हैं हम तो बड़ा दीन के ऊपर चल रहे हैं और हम तो अपनी औलाद को भी दीन के ऊपर चला रहे हैं इस तरीके से, राइट, लेकिन ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता, तो अब अजीब और गरीब किस्म के जो फैसले किए हुए होते हैं कि ऐसे दीन के ऊपर चलेंगे तो वैसे दीन के ऊपर एक खिचड़ी पकाई भी होती है ना, एक लेके चलना चाहते हैं दीन दुनिया को साथ साथ लेके चलना चाहते हैं, दीन दुनिया साथ साथ का मतलब ये नहीं होता कि जो है वो आप जो है वो जॉब भी कर रहे हैं और दीन भी कर रहे हैं, नहीं भाई, वो तो जो शरीयत सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो भी जॉब कर रहे होते हैं, वो भी जो है वो फैमिली टाइम और एंटरटेनमेंट टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं, वो भी हलाल एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, तो दीन दुनिया साथ साथ का मतलब ये नहीं होता, बल्कि जो दीन दुनिया साथ साथ का असल मतलब होता है ना वो ये होता है कि कुछ इधर की मान ली, यानी कुरान हदीस से जो चीजें सुनी जो अपने समझ में आई कुछ वो भी कर लिया, और बाकी जो है ना वो अपने नफ्स और शैतान की भी मान के चल रहे हैं और काफिरों की भी मान करके चल रहे हैं, ये होता है दीन और दुनिया साथ साथ, और ये इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट वर्केबल, ठीक है ना, और ये दीन के साथ इस्तेहजा है कि है ना, इधर की भी मानी उधर की भी मानी, खिचड़ी पका करके रखी हुई अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है ना, तो इस किस्म की जो जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, फिर उनके साथ कोई इबरतनाक वाकया अल्लाह ताला करवाते हैं, जिससे कि ना पूरी दुनिया के अंदर वो जलील हो रहे होते हैं, या दूसरे किस्म के उनको जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं उनकी जिंदगी के अंदर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा था, ठीक है। तो इनके ऊपर फिर जो है ना ये नफ्स को अभी चोट लगी है, ये पहली चोट इस वाकये में कुरान मजीद के अल्फाज से पता चलता है कि ये पहली गोया के लगता है जैसे इनको पहली चोट लगी है। अब इनको पहला एहसास हुआ है कि क्या किया हमने यूसुफ के साथ, उनमें से भी सबको नहीं बल्कि बड़े वालों को एहसास हुआ, उसने फिर इन लोगों को याद दिलाया, ठीक है। फंस गए ना बुरी तरीके से, तो जब फंस जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है वो रिमोर्स थोड़ा बहुत जो है वो शुरू होता है, वो भी हो जाए गनीमत है। बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि फंसने के बाद भी रिमोर्स शुरू नहीं होता, नदामत शुरू नहीं होती उसके बाद भी। तो फरमाया फलन अबरहल अर्दा, इन्होंने कहा बड़े वाले जो भाई थे कि मैं तो हरगिज जो है ना वो जमीन से टलूंगा नहीं, लन अबरहल अर्दा हत्ता यअज़ना ली अभी, हत्ता के बाप का जो है ना वो कोई हुक्म आ जाए मेरे लिए कि आ जाओ तुम, औ यहकुम अल्लाह ली, या अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए मेरे लिए, या अल्लाह ताला मुझे उठा ले, अल्लाह ताला मुझे बुला ले, आ जाओ तुम मेरे पास, ठीक है। वह हुआ खैरुल हाकिमी, और वो सबसे बेहतर हुक्म करने वाला है ना, अब अल्लाह याद आ रहा है, फंस गए हैं ना, अब अल्लाह याद आ रहा है। पहले तो अब्बू हुजूर जो है वो बार बार अल्लाह की याद दिलवा रहे थे, अब इनको खुद भी अल्लाह याद आ रहा है, ठीक है। इरजुउ इला अबीकुम, अब इसने जो है वो अपने छोटे भाइयों को हुक्म दिया इन्होंने कि अपने बाप की तरफ तुम लौट जाओ, मेरे बाप का तो कोई जिक्र ही नहीं, तुम्हारा बाप, ठीक है। तो बाप तो भाई इनका भी था पता नहीं, बहरहाल इन्होंने बाद में तौबा कर ली थी और नेक हो गए थे, तो इस वजह से इनके बारे में अच्छा ही गुमान रखना चाहिए। लेकिन जो बनी इसराइल के मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाकयात आते हैं ना, तो उनके अंदर जो है ना वो बाप का तो तस्करा नहीं है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद साहब तो उस पूरे के पूरे स्टोरी में थे ही नहीं। वहां पर जो है वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, तुम्हारा रब, तुम्हारा रब, मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं तुम्हारा रब, तुम और तुम्हारा रब, तो तुम्हारा रब नहीं है क्या अल्लाह ताला जो मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हो तुम और तुम्हारा रब, राइट। लेकिन कोई इस किस्म की जो है वो यानी सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अल्फाज चूंकि ऐसे थे इस वजह से बस चीज याद आ गई। तो अपने रब, अपने बाप की तरफ जो है ना तुम लौट जाओ, फकूलू या अबाना, फिर उनसे जाकर के कहो कि ए हमारे वालिद इन नबना का सरक, बेशक आपके बेटे ने जो है ना वो चोरी कर ली है, ठीक है। वहां पर भी ये नहीं कह रहे हमारे भाई ने चोरी कर ली, इन्नबना का यानी बाप के ऊपर भी होता ना सॉर्ट ऑफ मेकिंग समवन फील बैड अबाउट समथिंग, राइट, मेकिंग समवन फील बैड अबाउट समथिंग। तो आप कहते हैं तुम्हारे बेटे ने चोरी कर ली है, भाई ये क्यों नहीं कह सकते कि मेरे मेरे भाई ने चोरी कर ली, हमारे भाई ने चोरी कर ली। तो इसी वजह से कहा कि अभी जो है ना वो बस एक पहली चोट पड़ी थी, अभी भी दमखम जो है ना वो खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि नफ्स का दमखम जो है वो एकदम से खत्म नहीं होता, टाइम लगता है उसके अंदर। वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना, और हमने वही कहा है जो हमको खबर हुई है, ठीक है। वमा शहिदना, ये हम जो शहादत दे रहे हैं ना आपके सामने, तो बस जो हमें खबर हुई है ना हम तो उसी की शहादत दे रहे हैं आपके सामने। वमा कुन्ना लिल गैब हाफिज़ीन, और गैब के तो जो है ना वो हम यानी हिफाजत करने वाले नहीं है, यानी गैब के ऊपर हमें दस्तरस नहीं है, ठीक है। गैब की बातों का ध्यान ना था, यानी हिफाजत यानी शेख हिंद रहमतुल्लाह ने ध्यान ना था कर इस्तेमाल किया, मगर आसानी के लिए कि गैब की बातों के तो हम जानने वाले नहीं है। वसअलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फीहा, बस आप पूछ लीजिए क़रिया, क़रिया कहते हैं बस्ती, कि जिस बस्ती में हम लोग गए थे ना, तो आप उनसे कुन्ना फीहा जिसमें हम थे, आप उस बस्ती वालों से पूछ लीजिए। वलईरा अल्लती अकबलना फीहा, या ईर से यानी काफिला, पीछे भी ये लफ्ज आया है, तो उस काफिले वालों से पूछ लीजिए कि जिनके साथ हम यहाँ पर आए हैं, अकबलना फीहा, जिसके अंदर जिस काफिले के अंदर हम यहाँ पर आए हैं। वह इन्ना लसादिकून, और बेशक हम तो सच बोलने वाले हैं, ठीक है। इस मामले में वाकई ये सच ही बोलने वाले थे बुनियामीन के मामले में, क्योंकि दिस इज व्हाट दे न्यू, कि भाई उसने जो है वो चोरी कर ली थी, अब इनको हकीकत हाल का तो नहीं पता था। खुलासे तफसीर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अपनी बयान और कुरान के अंदर इसके बारे में लिखते हैं, कहने लगे कि साहब अगर इसने चोरी की तो ताज्जुब नहीं, क्योंकि उसका एक भाई था वो भी इस तरह की इससे पहले चोरी कर चुका है, जिसका किस्सा दुर्रे मंसूर में इस तरह लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की उनकी फुप्पी परवरिश करती थी। बाकी फुप्पी क्यों परवरिश करती थी वो मारूफ मसाइल में पढ़ लेंगे, तो जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक से अगर पहुंचे वहां तक। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उनकी फूफी परवरिश करती थी। जब होशियार हुए यानी जब थोड़ा सा बड़े हो गए, यानी बिल्कुल इन्फेंसी से बाहर निकल आए, तो होशियार हो गए, जैसे यहाँ पर ये मुराद है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने लेना चाहा तो वो उनको बहुत चाहती थी, उन्होंने उनको रखना चाहा। जाहिर इतने खूबसूरत थे और इतने यानी बच्चा तो वैसे ही इतना क्यूट होता है और ये तो माशाल्लाह। तो फूफी ने उनको रखना चाहा, इसलिए उन्होंने उनकी कमर में एक पटका कपड़ों के अंदर बांधकर मशहूर कर दिया कि पटका गुम हो गया, और सबकी तलाशी ली तो उनकी कमर में निकला, और इस शरीयत के कानून के मुवाफिक उनको फूफी के कब्जे में रहना पड़ा, यहां तक कि उनकी फूफी ने वफात पाई। ठीक है, हो सकता है रब्बुल इज्जत ने उस वक्त की बात यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद दिलवा दी हो, और इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है ना ये वाला हीरा बुन्यामीन को रखने का रख लिया हो, लेकिन इसकी निस्बत अल्लाह ही की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ही चाहते थे कि इस तरीके से ये मामला हो जाए। अब बंदों के जरिए से काम करवाना होते तो बंदे के दिल में ख्याल डालते हैं कि अच्छा ऐसे कर लो। बहरहाल एक क्लू मिलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुन्यामीन को रखने के लिए ये वाला तरीका क्यों इख्तियार किया, क्योंकि यही इनके ऊपर बीत चुकी थी बचपन में। तो इस शरीयत के कानून के मुआफिक उनको फूफी के कब्जे में रहना पड़ा, यहां तक कि उनकी फूफी ने वफात पाई। फिर याकूब अलैहिस्सलाम के पास आ गए, और मुमकिन है कि ये सूरत इस्तिरका की भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की रजामंदी से हुई हो, यानी उस वक्त भी जो है ना वो जो कि फूफी के पास ही थे, और फूफी जो है वो माँ की तरह थी, वालदा का इंतकाल हो चुका था बुनियामीन की पैदाइश के वक्त में। ठीक है, तो अब फूफी ही ने इनको जो है वो रेज किया, तो जाहिर है माँ जैसी मोहब्बत हो जाती है, तो हो सकता है फूफी ने इनके साथ जो है ना वो गठजोड़ करके कि हाँ भी मैं तुम्हें अपने पास इस तरह से रखूंगी, तो हो सकता है कि वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की रजामंदी से हुआ हो, इसलिए यहाँ भी आजाद का गुलाम बनाना लाजिम नहीं आया। बहरहाल हरचंद के कराइन और अखलाक यूसुफिया में जरा तआमुल करने से आपकी बरात इस फेल से यकीनन मालूम थी, मगर बुनियामीन पर जो भाइयों को गुस्सा था ना उसमें ये बात भी कह दी, यानी भाइयों को ये बात बाद में पता चल चुकी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो इसका हिस्सा नहीं थे, यानी उन्होंने चोरी वोरी नहीं करी थी। लेकिन गुस्सा जब आता है ना, तो जिसके ऊपर गुस्सा आता है तो उसकी अच्छाइयां जो है वो निगाह से ओझल हो जाती है। जैसे बेगम साहिबा को जब शौहर साहब पर गुस्सा आता है तो शौहर जानते हैं कि फिर उनकी कोई अच्छाई जो है ना वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, और कभी कभी बेगम साहब के साथ शौहर साहब भी कुछ जगहों पर ऐसा हरकत कर रहे होते हैं, जहां पर शौहर साहब जरा चढ़े हुए होते हैं वहां पर शौहर ही हरकत कर रहा होता है, जहाँ बेगम साहबा चढ़ी हुई होती है, जैसे आजकल अनफॉर्चुनेटली अक्सर जगहों पर यही मामला चल रहा है, तो वो फिर सारी अच्छाइयां गुम हो जाती हैं। तो वही जो भाइयों को जो है वो बुनियामीन पे गुस्सा आया, तो अब गुस्सा जो आया ना तो फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर भी उतर रहा है, और उनकी अच्छाई जो थी ना, जो पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चोरी नहीं करी, लेकिन वो नजरों से ओझल हो गया। गुस्सा इसी वजह से मोहलिक रूहानी बीमारियों के अंदर है, मोहलिक रूहानी बीमारियां, कि किसी की अच्छाई जानते हुए भी वो अच्छाई जो है ना वो नजर से ओझल हो जाती है, और बुराई ही बुराई जो है वो नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो गुस्से का इलाज कर लेना ही हमारी हमारे लिए खैर है। फरमा दिया कि फिर उसके बाद फरमाया कि बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को जो आगे आती है अपने दिल में पोशीदा रखा, और उसको उनके सामने जुबान से जाहिर नहीं किया, यानी दिल में यूं कहा कि इस चोरी के दर्जे में तुम तो और भी ज्यादा बुरे, यानी हम दोनों भाइयों से तो हकीकत सरका सादर नहीं हुआ, ना तो बुन्यामीन ने चोरी करी है ना मैंने चोरी करी थी, तो हमसे तो हकीकत हमसे तो खाली जाहिरी तौर पर चोरी जाहिर हुई, और तुमने तो इतना बड़ा काम किया कि कोई माल गायब करता है तुमने तो बंदा ही गायब कर दिया, राइट, तुमने तो बंदा ही गायब कर दिया ना, कि मुझको बाप से बिछड़ा दिया, और जाहिर है कि आदमी की चोरी माल की चोरी से ज्यादा सख्त जुर्म है, और जो कुछ तुम हम दोनों भाइयों के मुतालिक बयान कर रहे हो कि हम चोर हैं, उसकी हकीकत का अल्लाह ही को खूब इल्म है कि हम चोर नहीं हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जब भाइयों ने देखा कि उन्होंने बुन्यामीन को माखूज कर लिया और इस पर काबिज हो गए, यानी यूसुफ ने अलैहिस्सलाम ने कब्जा कर लिया, तो बराह खुशामद कहने लगे कि ए अजीज, इस बुन्यामीन का एक बहुत बूढ़ा बाप है और उसको बहुत चाहता है, उसके गम में न जाने खुदा जाने क्या हाल होगा उसका, ये तफसीरन ब्रैकेट्स में तफसीर होती है, तो उसको इस तरह बयान कर रहे हैं, और हमसे उनको इस कदर मोहब्बत नहीं है, यानी बुन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत है क्योंकि वो यूसुफ का सगा भाई था और वो छोटा भी है, तो हमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं है। सो आप ऐसा कीजिए कि इसकी जगह हम में से एक को रख लीजिए और अपना ममलूक बना लीजिए, हम आपको नेक मिजाज देखते हैं, उम्मीद है कि इस दरख्वास्त को आप मंजूर फरमा लेंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसी बेइंसाफ की बात से खुदा बचाए कि जिसके पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा दूसरे शख्स को पकड़ कर रखने, अगर हम ऐसा करें तो इस हालत में तो हम बड़े बेइंसाफ समझे जाएंगे, यानी किसी आजाद आदमी को गुलाम बना लेना और गुलामों का मुआमला करना उसके रजामंदी से भी हराम है, यानी बंदा खुद भी अपने आप को पेश करता है ना गुलामी के लिए, तो उसके साथ गुलामों का मुआमला करना उसकी रजामंदी से भी हराम है। जब हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला ने अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया था तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुमने तो अपनी मर्जी से मुझे पेश कर दिया, मैं तुम्हारे साथ गुलामों वाला मामला करूंगा, नहीं उनको बल्कि अपना बेटा बना लिया, क्योंकि उस वक्त बेटा बनाना जो था मुंह बोला बेटा बनाना नाजायज नहीं था शरीयत के अंदर, तो अपना बेटा बना लिया, ठीक है, यानी गुलामी वाला वाला मामला नहीं किया कि अच्छा ठीक है तुम कोने में जा करके अपने पड़ जाओ और जो है ना जो तुम कमाओगे वो मेरा होगा और जो तुम काम करोगे यार तो सब कुछ मेरा होगा और सब मेरे हुक्म से करोगे, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, ये होता है गुलामी वाला मामला। जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी वाला मामला नहीं किया बल्कि अपना बेटा बना लिया, ठीक है। तो अगर कोई अपने आप को पेश भी कर दे ना अपनी रजामंदी से तो उसको फिर भी गुलाम बनाना जो है हराम है, ये फरमाया। फिर जब उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम से तो उनके साफ जवाब के सबब बिल्कुल उम्मीद ना रही कि बुन्यामीन को देंगे, तो इस जगह से अलहदा होकर बाहम मशवरा करने लगे कि क्या करना चाहिए। फिर ज्यादा की ये राय हुई कि मजबूरी है सबको वापस चलना चाहिए, मगर इन सब में जो बड़ा था उसने कहा कि तुम जो सब के सब वापस चलने की सलाह कर रहे हो तो क्या तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप तुमसे खुदा की कसम खिलाकर पक्का कौल ले चुके हैं कि तुम उसको अपने हमराह लाना, ठीक है। देखें जुबान से अगर इकरार ले लिया जाए ना तो इवन ऐसे लोगों को भी जो कि यानी बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर रहे थे ऐसे लोगों को भी फिक्र पड़ जाती है, कॉल दे दिया है भाई भाई, इसी वजह से ना शरीयत के अंदर जुबानी कॉल ले लेना जो है ना ये एक बड़ी अहम चीज है, ये यानी शादी के अंदर भी निकाह होता है जुबानी कॉल दिया जाता है, और जब कोई ट्रेड एग्रीमेंट होता है बिअतु वाश्तरीतु जुबानी कौल दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब कागज के ऊपर लिखना जरूरी नहीं है, ये नहीं है कागज अगर नहीं होगा तो निकाह नहीं होगा या कागज अगर नहीं होगा तो जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो सकता, जुबान असल चीज जुबान होती है, कागज से तो खाली उसका रिकॉर्ड रख लिया जाता है, बाद में मर मर आ गए तो फिर पता चलेगा कि हाँ भी कागज में लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से बैत करना राइट, तो तज़किया नफ्स के रास्ते के ऊपर, बल्कि खाली तज़किया नफ्स के रास्ते के ऊपर नहीं, इवन जो जो हुकूमत बनती है तो हुकूमत से बैत करना ये भी जुबानी कौल इकरार करना, और इससे जो है ना वो जो लोग अदरवाइज बात नहीं मानने वाले थे ना वो भी अपने ऊपर एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना शुरू कर दे, इस वजह से ना बैत जो है वो सुन्नत है पॉलिटिकल मामले के अंदर भी और जो है ना वो जिहाद के मामले के अंदर भी, जैसे बैत रिजवान और जो है वो तज़किया नफ्स के मामले के अंदर भी, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम और सहाबियात से अलग अलग बैतें ली थी और फतेह मक्का के मौके के ऊपर दोबारा से जो है वो मक्का मुकरमा की औरतों से जो है बैत ली थी और मर्दों से अलग बैत ली थी, ठीक है। ये सुन्नत तरीका है, इससे जो है वो मामला आसान हो जाता है, लेकिन पता हो कि भाई बैत होती क्या है, हम तो ऐसे ही बैत कर रहे होते हैं ना जैसे कि बस वही रेले वाला मामला है, सारे जो है वो बुरका पहन रहे हैं तो खातून ने भी बुरका पहनना शुरू कर दिया, सारे दाढ़ी रखना शुरू हो गए तो इन्होंने भी दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, जो पिछले जो गुनाह थे जो नाफरमानी की जिंदगी गुजर रही थी उसके ऊपर कोई अफसोस नहीं है, कोई नदामत नहीं है उसके ऊपर, और ना जो है वो कोई इरादा है कि आइंदा नहीं करूंगा, बल्कि क्या इरादा है कि रेले में चल रहे हैं तो रेले के साथ साथ चलूंगा, कल को रेले ने जो है ना अपना रास्ता रुख मोड़ लिया तो मैं भी रास्ता मोड़ लूंगा, आंटी ने जो है वो बुरका पहनना शुरू कर दिया कुछ आंटियों के साथ को तो देख देख करके, कल को वो आंटियां अगर बुरका छोड़ेंगे तो ये भी बुरका उतार देंगी, क्यों, इसलिए कि इन्होंने तौबा नहीं करी है, तौबा नहीं करी बेपरदगी से राइट, इन्होंने सिर्फ खरबूजे को देख करके खरबूजे की तरह से रंग रंग पकड़ लिया है, इसकी कबूलियत नहीं है, इस बुरके की कबूलियत नहीं है, इस दाढ़ी की कबूलियत नहीं है, क्योंकि तौबा नहीं हुई है उस फिस्क व फुजूर वाली जिंदगी के ऊपर जो कि इनसे पहले चल रही थी। बात समझ आ रही है? तो अब देख लें पूरी दुनिया के अंदर दाढ़ी वालों की कोई कमी नहीं है, अब बुरके वालियों की भी बहुत कमी नहीं है, बहुत हो गई बुरके वालियां, लेकिन क्या नदामत और शर्मिंदगी है और आइंदा ना करने का इरादा है, आइंदा ना करूंगी, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से ना बड़ी आसानी से यू टर्न हो जाता है, जैसे हमारी सियासत में बड़ी आसानी से यू टर्न हो जाता है ना, उसी तरीके से दीन में भी बड़ी आसानी से यू टर्न ले लिया जाता है फिर, है ना, क्योंकि गो विद द फ्लो, दैट्स द आइडियोलॉजी, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो भाई तौबा तो बुनियाद है, इसके ऊपर जो है वो दीन खड़ा होता है। अगर तौबा ही आपने नहीं करी तो आपका दीन जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है, और आपसे मुराद हम सब, हमारा दीन फिर ऐसे ही है कि जैसे एक इमारत जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, एक हवा के झोंके के ऊपर एक जरा सा एक ट्रेमर आया, जलजले का हल्का सा ट्रेमर आया ना, ये इमारत यूं बैठेगी नीचे, क्योंकि बुनियाद ही नहीं है इस इमारत की, इस दीन की इमारत की। ठीक है जी, समझ में आ गया इंशाल्लाह सबको ये बात। तो यहाँ पे हम रास खत्म करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके साथ एहसान का मामला फरमाते हुए हमें सच्ची पक्की तौबा की समझ अता फरमा दे और तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।